मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس ہم اپنے اس پروگرام میں کلام بھی سنتے ہیں آج انشاءاللہ حسن بھائی سے کلام سنیں گے ہم اپنے اس پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ایک پیاری حدیث اس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو جلدی یاد کر لیتا ہے وہ ذہین بچہ بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری جس میں بھی بہت ساری انفارمیشن ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں جیسا کہ اسلام و سائنس پیارے نبی کی پیاری سنت کرامات صحابہ اور دین کی پیاری باتیں تو آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا کتنی بار
1000 بار
درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں آج کا سوال بتائیے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے یہاں پر کس کس کو معلوم ہے ایحان بھائی
بغداد شریف
بغداد شریف کہہ رہے ہیں جی بغداد بھائی بغداد بھائی کہہ رہے ہیں بغداد شریف میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے جی عفان بھائی
بغداد شریف
جی آپ کا نام
عبد الرافع
بھائی
بکراہ شریف
بغداد شریف میں ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث
میرا پیارا دین میرا پیارا دین
سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث اور انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ میں حدیث پاک یاد کریں گے
جی پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین ننی منی بچیوں پروگرام شروع ہو چکا ہے کہنا ہے پروگرام شروع ہو چکا ہے جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ہمارا پیارا دین کیا ہے
اسلام
کیا ہے زور سے ہمارا پیارا پیارا دین کیا ہے میرے سوال تو ہونے دیں ہمارا پیارا پیارا دین کیا ہے جی اور دین اسلام ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے انہیں اچھی اچھی باتوں کو لے کر آیا کرتا ہے یہ پروگرام میرا پیارا دین سوال کیا کیا گیا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار کون سے شہر میں ہے
بغداد شریف
جی بغداد بھائی بتائیں گے کون سے شہر میں
بغداد شریف
تو آپ نے دیکھا ہے نہیں تو آپ بغداد آپ کا نام ہے آپ بغداد شریف نہیں دیکھا چلے اچھا چلے یہ بتا دیں بغداد کون سے شہر کون سے ملک میں بغداد کیا ہے شہر اور شہر کس میں ہوتا ہے ملک میں ملک کون سا ہے
عراق
سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث جو جلدی سے حدیث پاک یاد کر لیتا ہے وہ من جاتا ہے
دین بچہ
اور ہمارے ساتھ موجود ہے عفان بھائی اور اس کے بعد ہیں ہمارے عبد الرافع بھائی اور یہ ہے محمد ایحان بھائی آپ دونوں بھائی نہیں ہیں ہاں یہ اس دن بھی بتایا تھا आपने अलग ही शक्ल मिल रही होती है। आज खैरियत से आप? कम डर लग रहा है आज? नहीं लग रहा थोड़ा तो? जी माइक पे बोले ना। आए नहीं थे पहले? आए थे, आप नहीं आए होंगे।
कल नहीं परसों आए थे?
कल नहीं परसों। हाँ आप कहाँ थे? आप नहीं थे प्रोग्राम में?
थे।
चले भाई, चले भाई, चलो हदीस पाक देखते हैं। आज कौन सी हदीस पाक हमने याद करनी है? जी स्क्रीन पर हदीस पाक दिखाइएगा और बच्चों ने भी लिखकर भेजनी है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे प्यारे बच्चों जो घर पर मौजूद हैं, ताकि आप जब लिखकर भेजें तो ठीक ठीक भेजें, उसकी जेर जबर पेश अपनी जगह पर हो, नुक्ते भी वहीं पर हों, क्योंकि अगर आप अपने जहन से लिखने बैठेंगे तो कहीं का कहीं नुक्ता चला जाएगा, जेर का जबर जबर का पेश बन सकता है। तो आपने इसको बिल्कुल ठीक ठीक हमें लिखकर भेजना है। और छोटी छोटी बच्चियां तो माशाल्लाह लिखती हैं, जो बड़े बड़े बच्चे हैं या बच्चे हैं वो भी लिखकर भेजा करें, और अगर हेल्प से करते हैं तब भी कर सकते हैं। भाई बड़ों की थोड़ी हेल्प ले ली, थोड़ा काम खुद भी किया, ऐसा ना हो सारा कुछ अम्मी से लिखवाया, अब्बू से लिखवाया, कलर वगैरह करा के सब तस्वीर भी उनसे खिंचवा के अपना खाली नाम लिखवाया और भेज दिया, फिर ये कैसे मज़ा आएगा? ऐसे तो नहीं होगा ना, बल्कि आप ख़ुद भी कोशिश करें, उसमें हेल्प आप ले लें। यहाँ पर भी देखें माशाल्लाह हदीस पाक लिखकर लाए हैं हमारे मोहम्मद अफ़ान भाई, ये बाद में दिखाएंगे, लेकिन जब सबकी दिखाएंगे ना तब दिखाएंगे, ठीक है जी। तो बच्चों ने भी कोशिश करनी है अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर। चले भाई हदीस पाक याद करते हैं, देखते हैं कौन जल्दी से हदीस पाक याद करता है। मन करत दईफा,
من
قرر ضيفا،
من قرر ضيفا،
من قرر ضيفا،
من قرر ضيفا،
عفان بھائی،
من قرر ضيفا،
جی،
من قرر ضيفا،
کیا آپ سنا رہے ہیں؟ من قرر ضيفا،
من قرر،
مائک کہاں ہے آپ کا؟ مائک تو لگا ہوا ہے نا، زور سے بول رہا ہے، ایسے میرے کان میں نہیں بول رہا، آپ مائک کی طرف دیکھ کے بولیں، آواز آ جائے گی، جی، زور سے، مائک چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، ہاں، اچھا مسکرا کے تو دکھائیں، हाँ ऐसे रिलैक्स हो जाओ, यूँ हुए हुए जैसे पता नहीं कुछ जंग छिड़ने वाली है, या कोई जंग नहीं हो रही, रिलैक्स। अफान भाई भी अच्छे से हैं, कुछ नहीं कहते, ठीक है, ऐसे मुस्कुरा के आप बोले, आप बोले मन करद,
मन करद
दईफा,
दईफा,
हाँ ऐसे, ठीक है जी। जी
मन करद दईफा,
माशाल्लाह आज लग रहा है मोहम्मद एहान भाई आगे चले जाएंगे। मन करत दईफा,
मन करत दईफा,
दखल अल जन्नता,
दखल अल जन्नता,
मन करत दईफा, दखल अल जन्नता,
मन करत दईफा, दखल अल जन्नता।
अब ये जो आप मन पढ़ रहे हैं, मन गुन्ना कर रहे हैं, इसकी वजह भी बतानी होगी आपने, ठीक है। मन करत दईफा, दखल अल जन्नता,
मन करत दईफा, दखल अल जन्नता,
मन करत दईफा, दखल अल जन्नता,
मन करत दईफा, दखल अल जन्नता।
याद हो गया बगदाद भाई जी?
मन करत दईफा, दखल अल जन्ना।
हाँ मन करत राखो कहाँ मिलाएंगे? दुआत से, ठीक है जी। और आप इख्फा जो कर रहे थे वो भी सही था अपनी जगह, नून साइन के बाद क्या आ रहा है? काफ आ रहा है, काफ रुफ इख्फा में से है, लेकिन ये कुरान पाक नहीं है, हदीस पाक है, लिहाजा उस इख्फा के बगैर भी इसको पढ़ सकते हैं जी।
मन करत दईफा, दखल जन्नत है।
जो दोबारा से,
मन करत दईफा,
दोबारा,
मन करत दईफा, दखल जन्नत है।
रा को किससे मिलाना है? दुआत से ना, रा जबर है और दुआत के ऊपर क्या है? तजदीद। तो तजदीद को कितनी बार पढ़ते हैं?
दो।
कैसे कैसे? एक बार अपनी हरकत के मुताबिक और एक बार
अपने से पहले वाले,
पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर। तो मन करत दईफा,
मन करत दईफा, दखल जन्नत।
जबरदस्त जी,
मन करत दईफा, दखल जन्नत।
आपको तो रियायत दे देते ना हम, माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी। दोबारा से सुनाए,
मन करत दईफा,
हाँ आगे, दखल अल
जन्नत,
माशाल्लाह। बस राख और दुआत से मिलाना रह गया, और बाकी जो है ना हमारे अफान भाई के लिए लिख ले पहले से, छूट है ना, छोटे हैं ना, तो ये थोड़े इनके तलफ़ुज़ की भी, इनके अल्फाज की भी, और सही है, खुश है अब, ठीक है। एक दफ़े हमने आपका लिखवा दिया, सारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी लिख लें, हमारे जो अफान भाई हैं वो छोटे हैं, उनके थोड़े अल्फाज भी पूरे नहीं अदा होते, और थोड़े थोड़े जेर जबर पेश भी आगे पीछे हिल जाते हैं, लेकिन कोशिश उनकी अच्छी होती, शर्माने की बात नहीं है, छोटे से तो कोशिश तो करते हैं ना। चले भाई अभी देखे आगे जी, क्या हुआ? मन करद,
मन करद
दईफा,
दईफा,
दखल अल,
दखल अल
जन्नता,
जन्नता।
क्या बात है माशाल्लाह। बस ये देखें डायरेक्टर साहब भी कह रहे हैं कि मुझसे डर रहे हैं आप। अब देखें मैं ऐसा हूँ क्या? आपको डर लग रहा है मुझसे? उनको नहीं, आपको लग रहा है? किसी को? हसन भाई आपको क्यों लग रहा है? नहीं अब नहीं लग रहा, देखें अब मुस्कुराने लगे, थोड़ा सा प्रेशर होता है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएंगे। चले भाई तर्जमा याद कराएंगे आप? सफीउल्लाह भाई
जी,
तर्जमा आप याद कराएं।
जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो
जन्नत में दाखिल होगा।
जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा
जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा
जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा
जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा
वो जन्नत में दाखिल होगा
वो जन्नत में दाखिल होगा।
जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा
नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा।
हुआ नींद आना शुरू हो गई, एनर्जी चली गई, यहाँ बिस्तर वगैरह लगवा दे क्या अब एकदम यूँ आवाज़ें नीचे चली गई, थोड़ी आप भी निकलवाएं आवाज़ें फिर निकलेंगी इनकी।
जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा
जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा
जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा
जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा।
आप चार और मैं एक, मेरे ख्याल मेरी तेज हो गई आवाज़, आप देखते किसकी ज्यादा निकलती है। जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये जोर से पढ़ाने का मकसद होता है थोड़ा आदमी चुस्त हो जाता है तो दिमाग भी तेज हो जाता है तो याद होता है। जी भाई बड़ी देर से हाथ उठा के बैठे हुए लोग समझ जाओगे शायद सजा मिल गई कोई।
मन कर दईफा दखल जन्नत तर्जुमा जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा।
सुना है जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हमारे अफान भाई सुनाएंगे।
जो मेहमान की नमाजी करेगा है
क्या करेगा
जो मेहमान
मेहमान नमाजी करेगा नमाजी नहीं नवाजी
नमाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा।
हाँ वो जन्नत में दाखिल होगा। ठीक है भाई रियायत है आपके लिए लेकिन इतनी भी नहीं करे ना अब मेहमान नमाजी कर दिया आपने मेहमान को भी नमाजी तो होना चाहिए लेकिन यहाँ मेहमान नवाजी है। जी
मन करत दईफा दखल अल जन्नत हमारे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा।
माशाल्लाह। और आज के ज़हीन बच्चे पता है आपको कौन है? जी कौन है माइक में तो बताए ना एहान भाई। आज के ज़हीन बच्चे हमारे अफ़ान भाई
सुभानअल्लाह
भाई पहले से बहुत बेहतर सुनाया है उन्होंने। अरबी भी पहली दफ़ा में उन्होंने काफ़ी बेहतर सुनाई थी और तर्जमा भी उन्होंने थोड़ा सा वो नवाजी को थोड़ा सा वो हो गया तो वो छोटे भी है ना उनके लिए खसूसी डिस्काउंट भी तो रखा है ना हमने डिस्काउंट पैकेज में रहते हैं वो माशाल्लाह। तो आज वो ज़हीन बच्चे बन गए इसी तरह हौसला अफजाई करेंगे हम तो आगे बढ़ेंगे। बड़ों को भी चाहिए कि छोटे बच्चों की हौसला अफजाई करें। थोड़ी सी गलती हो उस पर डांट दिया इतने नंबर सारे काट दिए टीचर भी होते ना तो वो बोलते मैं आइंदा पढ़ूंगा ही नहीं मैं भी नहीं कर रहा तो हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह वो और आगे बढ़ेंगे। अब देखें जी तस्वीरों की तरफ चलना है हमने उससे पहले सबसे पहले तस्वीर हम अपने मोहम्मद अफ़ान भाई की दिखाते हैं। इन्नल कदीबा यहदी इलल फुजूर झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और इस पर इन्होंने खूब स्टार्स वगैरह और ये सब बनाया भाई ये तो एक वईद थी ना तो इस पर कुछ ऐसे बनाते कोई आग वगैरह कुछ खैर माशाल्लाह मेहनत इन्होंने की है और इसमें इन्होंने हिस्सा बनाया अम्मी ने अबू ने
मैंने भी करा मम्मी ने
आपने भी किया मम्मी ने भी किया चले दोनों की मेहनत मुश्तरक हमारे सामने है और याद हो गया तर्जमा सुनाए हाँ तो झूठ बोलना भी नहीं है माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत है आपकी। आइए अब दीगर तस्वीर की तरफ भी चले सफीउल्लाह भाई और तस्वीरें भी आई हुई है नहीं आई
जी है
चले भाई देखते हैं फिर माशाअल्लाह। मेरा प्यारा दीन फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की कुंजी वुजू है और जन्नत की कुंजी नमाज है। उरूज फातिमा बिन्त इफ्तिखार अहमद शाहपुर लाहौर से और कुंजी चाबी भी बना दी। कुंजी क्या होती है
चाबी
की तो की उन्होंने बड़ी सी बीच में बना दी है माशाअल्लाह ज़बरदस्त। नेक्स्ट जी उरूज फातिमा फिर से मेरा प्यारा दीन फरमाने मुस्तफ़ा हक बात कहो अगरचे कड़वी हो हक बात कहो अगरचे
कड़वी हो
कड़वी हो कड़वी नहीं कड़वी ठीक हाँ कड़वी हड़े हमारे अफ़ान भाई का हड़े रे से बदल जाता है। चले जी नेक्स्ट ज़बरदस्त क्या बात है एक प्यारी हदीस मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता यही लिखा हुआ है मैं टेक लगाकर नहीं खाता अच्छा
माशाल्लाह। और लिखने वाले कौन है?
नूर फातिमा
पत्तारिया बसीरपुर से। और ये बड़े जबरदस्त पौधे दरख्त है, दरख्तों में दरख्त लगे हुए। अच्छा, एक सेब का और दूसरा कौन सा ही है ये दरख्त? मोहम्मद एहान भाई, एक तो खुद वो तो लिख रहा है उसका सेब का, दूसरा कौन सा है?
दूसरा
नहीं अंगूर लिख रहे हैं। अंगूर है, अंगूर का दरख्त होता है क्या? होता है अंगूर। फिर कहाँ से आते हैं? आसमान से आते हैं। क्या होता है उसका?
दरख्त
होता है। अभी आप बोले नहीं होता दरख्त,
होता है
पक्की बात है। अफान भाई कह रहे हैं नहीं, सब सब सोच ले, दरख्त होता है। दरख्त नहीं होता, बेल होती है। बेल भी तो होती है ना, देखी नहीं है ऐसे वो सारे से चढ़ रही होती हैं कहीं पे, बहुत सारे पत्ते वगैरह लगे होते हैं। उसका सीधा तना नहीं होता बल्कि किसी दीवार पे इस तरह से वो ऊपर जा रही होती है। तो कुछ सब्जियां और फल ऐसे हैं जो बेल में लगते हैं, दरख्त में नहीं, नहीं लगते। तरबूज किस में लगता है? तरबूज किस कैसे पे होता है? बेल में कहाँ से लगेंगे? तरबूज का क्या होता है? दरख्त बेल दरख्त होता है। सोचे तरबूज इतना बड़ा ऊपर लगा हो, उसके नीचे कोई आए और वो टूट के नीचे आ गया, क्या होगा? वो तरबूज आएगा, अपना तरबूज टूट जाएगा जी। हाँ, तरबूज भी किस में होता है?
बेल
में लगा हुआ होता है। वरना सोचे ना, इतना बड़ा तरबूज ऊपर से हारा है और जमीन, बेल जो है वो जमीन पे ही फैल जाती है, तो वो इस तरह जो है किसी को इंशाल्लाह उसकी वजह से नुकसान से भी बचत हो जाएगी। चले भाई, ये तरबूज पे चले गए हम उनके दरख्त को देख कर। अंगूर के दरख्त देखें, दरख्त में अंगूर लगे हुए भी कैसे थे हमारे बसीर बाजी बसीरपुर से, जो हमारी फातिमा बाजी ने भेजा है जी, माशाल्लाह। चले भाई, हाँ तो अंगूर तो होते ना ग्रीन ग्रीन। नेक्स्ट,
बिल्कुल
मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस। ला तग़दब, गुस्सा
ना करो।
ये भी आमीना अत्तारियाँ हैं भाई, ये जो बच्चे हैं ना ये नहीं आएंगे लग रहा है। सियालकोट के गांव
मधुपुर,
ये क्या है? आप क्या डाल के भेजे गौर से?
बुद्धूपुर।
अच्छा भाई, सियालकोट के गांव से है। सियालकोट में भाई हमने पहले इनसे पूछा था ना कहाँ होता है, या बुधू होगा मेरा ख्याल है। ये दाल पे तजदीद तो नहीं है ना, वरना फिर बुद्धू पढ़ेंगे ना। बुधूपुर, उन्होंने एराब लगाया है। ठीक है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई। अब आमना बाजी आपकी कॉल भी आनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा और तारुफ करा दिएगा अपनी जगह का। नेक्स्ट, यस सिरु, आसानी
पैदा
करो। और ये कौन है भाई? हमदा शफीक, फिला दियार मुस्तफ़ा। वाह भाई वाह भाई, ये आपकी बहुत अरसे बाद आई है, बार बार आनी चाहिए। और फिर वही है, बच्चों की नहीं आ रही, माशाल्लाह। नेक्स्ट, अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा, कुछ तस्वीरें तो दिख रही हैं। खैरुल हुदा हुदा मुहम्मदिन, माशाल्लाह। लिख कर तो इन्होंने नहीं भेजी है, पर जो कलर्स हैं वो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहे जी। ईशा सज्जाद, अरीशा सज्जाद हैं ये, माशाल्लाह। वाह के एंड से जी, ज़बरदस्त। आपने अगली दफ़ा और ब्राइट कलर यूज़ करने हैं, ठीक है जी? जी, तो ये तस्वीरें सारी पूरी हो गई और बच्चों ने नाक कटवा दी। बच्चों ने देखे, हमने कल भी बोला था आज भी बोला, लेकिन बच्चों की तरफ से तस्वीरें
नहीं
आई। और ये हमारा प्रोग्राम कहाँ से होता है?
किस्मती चैनल
कहाँ है? यूट्यूब पे है भाई, इन्होंने चैनल पर नहीं आता, मदनी चैनल पे आता है ना। और शहर कौन सा है ये?
कराची।
ये सियालकोट में रहते हैं? क्या हो गया बगदाद भाई, कराची में ना। कराची से कितनी तस्वीरें आई हैं?
कराची से एक भी नहीं।
एक भी नहीं, कितना बड़ा है कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आपको पता है?
अफान लिख के आई है।
अफान, हाँ अफान लिखा नहीं है ना। कराची कहाँ के हैं आप? ये माइक में बोला करें जल्दी से, कराची के ही हैं लेकिन लिखा भी नहीं है आपने। तो ये एक ले आए, बकिया तो कोई नहीं आ रही तस्वीरें। क्यों? उन्होंने कहा ठीक है, अपने घर की बात है, हम क्या करेंगे, दूसरे भेज दें। भाई आपके घर की है तो आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और इसमें पिक्चर ऑफ द डे कौन सी है सुफीला भाई?
अफान भाई की
है, माशाल्लाह। अफान भाई की पिक्चर है पिक्चर ऑफ द डे, माशाल्लाह। सब कहते बहुत मुबारक हो, अफान भाई को कहते बहुत मुबारक हो। और भी है भाई पिक्चर ऑफ द डे, या बस एक ही होगी? यही है। चले, वैसे वो दरख्त वाली अच्छी थी लेकिन उस दरख्त में अंगूर आ गए, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई तो इसलिए वो रह गई है। लेकिन बहुत अच्छे अंदाज से आपने ड्राइंग की थी। और अब चलेंगे हम अपने हसन भाई के पास कलाम सुनने के लिए। सेगमेंट है हमारा
कलाम।
मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन,
جی حسن بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟
اللہ کرم آپ سنائے کیسے؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ پاک آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. درجہ رابعہ میں ہے نا؟ درس نظامی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. دو چار سال بعد کیا بات ہے, مدنی ہو جائیں گے. اللہ پاک آپ کو عالم بعمل بنائے. ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟
قسمت میری چمکائیے,
قسمت میری چمکائیے, چمکائیے آقا. کلام سننا ہے, ہو سکے تو عالم تصور میں, تصوری تصور کے اندر یہ سوچے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کے سامنے موجود ہیں اور آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ قسمت میری چمکائیے, چمکائیے آقا.
قسمت میری چمکائیے, چمکائیے آقا, میرے آقا قسمت میری چمکائیے, چمکائیے آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا.
قسمت میری چمکائیے, چمکا
then
ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری عطا فرمائے اسی خوبصورت کلام کے ساتھ. اب چلیں گے صفی اللہ بھائی کے پاس. صفی اللہ بھائی
جی کالس ہیں ہمارے پاس, کالس شامل کرتے ہیں. جی کالس.
صفی اللہ بھائی اور میں پیارے پیارے وقار بابو, میں ہوں محمد احمد عطاری چشتیہ شریف سے.
آمین آمین ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز سے اپنے کال کی اور حدیث پاک بھی سنائی. چلے دوسرے کال کی طرف چلتے.
میرا نام شاہزمان اتاری ہے, میں شاہپور جان سے کر رہا ہوں. آگے سوال کا جواب ہے کہ بغداد شریف
سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت شعر. اللہ پاک آپ کو دوبارہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. نیکسٹ.
میں ہوں غلام محمد عطاری اور میں ہوں احمد ایان عطاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, بغداد شریف میں ہے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کالس کمپلیٹ ہو گئیں.
جی
چلے بھائی تو پھر اب آپ کی طرف آ جائیں گے. کیا سیگمنٹ لائے ہیں؟
پیارے نبی کی پیاری سنت.
جی چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. پیارے نبی کی
پیاری سنت.
میرا پیارا دین, میرا پیارا دین.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا بھی ہے. جی ہاں پیارے بچوں, کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک ضرور دھویا کریں. عام طور پر کام کاج करने की वजह से हाथ मिट्टी वाले हो जाते हैं। इसी तरह स्कूल से आते हैं या खेल कूद के आते हैं या कुछ ना भी किया हो तो फिर भी बहुत सी जगह हमारे हाथ लग चुके होते हैं। तो अब हाथ धोए बगैर खाने से बीमारियां लगने का खतरा रहता है। और प्यारे बच्चों, खाने से पहले हाथ मुंह धोने को खाने का वुजू कहते हैं। और खाने के वुजू की तो क्या ही बात है कि खाने का वुजू मोहताजी दूर करता है, घर में भलाई बढ़ाता है, शैतान को दूर करता है और रिज्क में इजाफा होता है। तो हमने खाने से पहले और बाद में खाने का वुजू करना है, सुन्नत की नियत से करेंगे, इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा और बीमारियों से भी हिफाजत रहेगी। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। माशाल्लाह भाई, खाने से पहले खाने के बाद क्या करना है? पोंछो तक हाथ। कहाँ तक? हाँ, पोंछो तक मतलब ये इतना, ठीक है, ये दोनों इतना हाथ धोए और कुल्ली कर ली और मुंह आगे का धो लिया। हाथों से खाना है और कहाँ खाना है? मुंह में। तो मुंह भी पेट में खाना है, मुंह में खाना है। मुंह से पेट में जाएगा ना, पेट कैसे धोएंगे? अंदर से मैदा निकाल के धोए। मुंह से पेट में जाएगा ना, तो मुंह को कुल्ली कर ले और हाथ धो ले, ठीक है, यही दोनों धो सकते हैं, मैदा तो नहीं धो सकते अंदर कुछ है। तो क्या करें भाई, ये हाथ धो लिए और कुल्ली कर ली, उसके बाद
मुंह
भी धो ला, नहीं मुंह नहीं धो, मुंह छोड़ दे, ठीक है, ये इतना हिस्सा जितना खाना है ना इतना धो लिया, कुल्ली कर ली, उसके बाद फिर खाना खा ले। खाना खा लिया, कंप्लीट हो गया, फिर क्या करें?
दोबारा क्या?
वो नहीं बताने देना, वो आए हमारे प्रोग्राम में, वो भी तो कुछ बोलेंगे। फिर क्या करें? ख़त्म, फिनिश। प्लेट उठा ले भाई, अफान भाई वापस ले ले प्लेट। चल ले ली, अब क्या करेंगे आप बताएं? फिर से हाथ धोए।
हाँ,
फिर से हाथ धोए, खा लिए ना, हाथों पे लग गया होगा तो फिर हाथ धो ले, और फिर खाया कहाँ था? मुँह में, तो मुँह भी साफ़ कर ले, कुल्ली कर ले, इससे क्या होगा? दांत आपके साफ रहेंगे। वरना क्या है, जब खाना खाएंगे तो थोड़े बहुत रेशे वगैरह रह ही जाते हैं, वो रहेंगे अंदर, तो फिर क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद सड़ने वगैरह लगेंगे, तो फिर मुँह से क्या आएगी? क्या आएगी? हाँ, अब आप किसी के पास, अभी जैसे मुझे यूं करके बोल रहे थे, आप किसी के कान के पास बोलने जाएंगे, वो आपसे दूर जाएगा, आप करीब आ रहे हैं, वो दूर जा रहा है, क्यों? इसलिए कि आपके मुंह से क्या आ रही है?
बदबू।
हाँ, बदबू आ रही है, या बेचारा नाक बंद करके सुनेगा आपकी बात। तो अगर हम खाने से पहले भी मुंह साफ करेंगे और खाने के बाद भी मुंह साफ करेंगे, तो इससे इंशाल्लाह हमारा मुंह साफ रहेगा और मुंह से बदबू
नहीं
आएगी। इस्लाम के हर हुक्म के अंदर बहुत सारी जो है वो हिकमतें और हमारे फ़ायदे की चीज़ें हुआ करती हैं, और इन बातों पर अच्छी नीयत के साथ अमल करेंगे कि करना क्या है। माइक में जोर से, जोर से, इंशाल्लाह सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा और ये फ़ायदा तो हासिल होगा ही होगा। आप चलेंगे हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इस्लामिक
हिस्ट्री।
मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन।
जी भाई, इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट शुरू हो चुका है, और इसमें हमने कल क्या सुना था? वो तो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, कल क्या सुना था वो बताएं, बताएं, आप बोल रहे हैं तो हाथ उठा रहे हैं। जी,
सांप भी डरते थे और जिन्नात भी डरते थे।
कौन कौन डरता था?
सांप और जिन्नात।
माइक में भी इतना हल्का बोल रहे
हैं। सांप और जिन्नात,
शैतान और
जिन्नात डरते थे, और जिन्नात अपना रास्ता बदल लेते।
जिन्नात बदलते थे या शैतान बदलते थे?
शैतान
बदलते थे। अच्छा, और आप क्या बताएंगे?
और जो है मुझे तो मेरे फारूक रज़ियल्लाहु तआला बहुत ज़्यादा रोब वाले भी थे।
हाँ, बहुत ज़्यादा रोब वाले भी थे, तो उनका रोब जो है वो शैतानों पर भी था। अब बता दें, आप ही बता दें, फिर और बता दें।
और जो है आपने एक वाक्या भी सुनाया था कि जो है एक गैर मुस्लिम था, उसने एक वो देखा था, ख्वाब देखा,
वो पहले था, वो अब आपके जो है ना कैसे अब प्ले हो रही है, वो पुराना था, इससे पीछे था, ठीक है जी। वो सिद्दीक आपका लगभग था ना, कि जो आप कहते थे वो सही हो जाया करता था। अच्छा, अब आपको हम ये बता रहे हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या थे? रोब वाले साहबी हैं, जिनसे न सिर्फ इस्लाम के दुश्मन बल्कि शैतान भी डरता था, रास्ता अपना चेंज कर लिया करता था। लेकिन आप दीन के मामले में बहुत सख्त थे। किस मामले में?
दीन
के मामले में। अपने लिए नहीं कि थोड़ा खाना देर से मिला तो गुस्सा, पास बच्चे बड़े नहीं होते, खाना देर से मिला वो आ गया तो उसी को फेंक दिया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसे भी आपने सुना होगा, गुस्सा दिखा रहे हो, खाने की प्लेट ही फेंक रहा है, भाई अब तो आगे खा लो, نہیں اسی کو پھینک دیں گے، اسی کو اٹھا کر یہ کر دیں گے۔ تو یہ کس کے لیے غصہ آ رہا ہے؟ اپنے لیے۔ یہ غصہ کیسا ہے؟ اپنے لیے کہ کھانا کیوں دیر سے آیا، بچے جو ہے وہ تو کچھ نہیں پھینک سکتے کیونکہ انہیں پتہ کچھ اگر پلیٹ پھینکی تو اس کے بعد پھر ہو سکتا کھانا ہی نہ ملے، تو وہ ایسے کچھ اور غصہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ والی بات اچھی ہے نہیں ہے؟ تو بولے نا، یہ بات اچھی
نہیں
ہے۔ لیکن آپ جو غصہ کرتے تھے وہ دین کے معاملے میں، کہ کوئی اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے، تو وہاں پر آپ کو جلال آیا کرتا تھا، اپنے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔
سبحان اللہ،
میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، سب کہہ دے، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل
ابو بکر،
ابو بکر ہیں، اور دینی معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں۔
سبحان اللہ،
اور پھر فرمایا حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے عثمان ہیں۔
سبحان
اللہ، اور سب سے بڑے قاضی علی بن ابی طالب ہیں۔ جی، سب سے بڑے قاضی علی ابن ابی طالب ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سب سے بڑے قاضی، حضرت ابو بکر سب سے بڑھ کر رحم دل۔ حدیث میں کیا آیا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رحم دل کون ہے سب سے بڑھ کر میری امت میں؟
ابو بکر۔
ہاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل تو سمجھتے ہی ہوں گے، رحم کرنے والے۔ اور سب سے زیادہ دینی معاملے میں سخت کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب سے زیادہ حیا کے معاملے میں سچے کون ہیں؟ سب سے بڑے حیا دار کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ سب سے بڑے قاضی کون ہیں؟ حضرت
علی۔
قاضی کیا ہوتے ہیں؟ قاضی بھیا ہاتھ دو اٹھ گئے، ایک حسن بھائی کا اٹھ گیا، ایک ہمارے بغداد بھائی کا اٹھ گیا، تو بغداد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی،
جو سچا انصاف کرتا ہے،
جو سچا انصاف کرتا ہے وہ قاضی کہلاتا ہے، اور جو جھوٹا کرے وہ وہ پتہ نہیں۔ بھائی انصاف تو سچا ہی ہوگا نا، انصاف تو سچا ہی ہوتا ہے، اور قاضی کا مطلب ہوتا ہے بڑا زبردست، ماشاء اللہ، دیکھے ذہین ہے یہ، تھوڑا یاد کرنے میں کوئی پیچھے رہ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذہانت یہ بھی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے یاد بہت ہوتا ہے لیکن سمجھ اتنا نہیں آتا، بعض ہوتا ہے سمجھ بہت آتا ہے یاد اتنا نہیں ہوتا۔ تو یہ سمجھ آنے والے کو ویسے یاد بھی ہونا چاہیے، کہ یاد ہوگا تو سمجھے گا نا۔ خیر، ماشاء اللہ، انہوں نے صحیح بتایا، جو فیصلے کرتے نا ان کو کہتے ہیں قاضی۔ تو ظاہر ہے حضرت علی ہیں، وہ تو صحیح فیصلہ کریں گے، سچا فیصلہ ہی کریں گے، تو قاضی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو۔ تو سب سے بڑے قاضی کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں غصہ بھی تھا، حضرت عمر کے مزاج میں غصہ بھی تھا، لیکن آپ یہ اپنے فائدے کے لیے غصہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ صرف اسلام کے خلاف ہونے والے کام پر غصہ کرتے تھے، اپنے معاملے میں نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی میں نے مثالیں آپ کو دے دی۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برے رویے سے پیش آئے اس پر بھی غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ابھی آپ کی سیرت میں واقعات ملتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ سامنے والے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اچھے انداز سے پیش نہیں آیا، برا انداز معاذ اللہ اختیار کیا، تو حضرت فاروق اعظم اس پر فوراً غصہ ہو جایا کرتے تھے، کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہر فرض سے بڑھ کر فرض ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں چونکہ غصہ تھا، تو آپ اپنے غصے کو ٹھنڈا بھی کیا کرتے تھے، غصے کو کیا کرتے تھے؟
ٹھنڈا۔
غصہ ہوتا ہے نا، غصہ آتا ہے کیسے ہو جاتے ہیں، بعض بچے لال پکوڑا، منہ بھی لال ہو جاتا ہے، ایسے غصہ آ جاتا ہے، تو غصے میں یہ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا۔ اس کو کیا کریں؟ ٹھنڈا۔ تو بچوں اور بڑوں سب کے لیے ایک نسخہ یہاں پر موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے غصے کو ٹھنڈا کرتے تھے، کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا تو آپ نے ناک میں پانی چڑھایا۔ کیا کیا؟ ناک میں پانی چڑھایا، اور پھر ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ عمل غصے کو دور کر دیتا ہے۔ غصہ آیا تو آپ نے ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا؟ ناک میں
پانی
چڑھایا، اور پھر فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے اور یہ عمل غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اگر غصہ بہت زیادہ آئے تو اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ناک میں
پانی
چڑھائیں۔ ناک میں کیسے پانی چڑھائیں گے؟ عفان بھائی، جی عفان بھائی کو دکھائیں ہمارے، کیسے؟ مائک تمہیں بولے اور ہاتھ سے کر کے دکھائیں۔
پہلے پانی لے کے پھر یوں،
پانی لے کے پھر یوں، اور نہیں چڑھا تو؟ جی بغداد بھائی،
ہاں
ہاں ہاں، اور ہاں हाँ, अब आवाज़ आपकी गई नहीं होगी, माइक नीचे है। तो यूँ पानी लेना है, थोड़ा सा उसको खींचना है, ठीक है? कोई मोटर वगैरह नहीं लगेगी ऊपर जाने के लिए, बल्कि थोड़ा सा सांस को ऐसे खींचेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं होना, दिमाग में चढ़ जाएगा जाके, फिर छींके लगेंगे आपको। तो थोड़ा सा खींचेंगे तो पानी नाक में चढ़ जाएगा, इस तरह गुस्सा ठंडा होता है। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने वाले थे। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि वो अपने वालिद की कसम उठा रहे हैं। किसकी कसम उठा रहे हैं?
वालिद।
हाँ, ये बड़ा अहम मसला है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, सबके लिए, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं लड़के वगैरह उनके लिए भी, कि ये बहुत हो रहा होता है, इसकी कसम उसकी कसम, ये कहते हैं ना कसमें उठा रहे होते हैं। तो याद रखिए, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफात की कसम उठा सकते हैं और किसी की कसम नहीं उठाई जा सकती है, जिसको हम कहते हैं कसम खाना, कि इसकी कसम, तेरे सर की कसम, माँ के सर की कसम, इस तरह की बातें हो रही होती ना, तो इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह और कसम की भी जहाँ ज़रूरत हो, बस बाज़ का तो तकिया कलाम होता है, मतलब हर बात में कसम से इसकी कसम उसकी कसम, तो ये तरीका ठीक है
नहीं
है। हज़रत फारूक आज़म को देखा कि एक मरतबा वो अपने वालिद की कसम उठा रहे हैं, यानी यूँ कह रहे हैं कि मुझे मेरे बाप की कसम, ये भी होता ना, खा अपने बाप की कसम, खा अपनी माँ की कसम, तो ये कसमें खिलाना भी गलत है और खाना भी गलत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुन लिया और इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हें अपने बाप और दादा की कसम उठाने से रोकता है, अल्लाह पाक तुम्हें अपने बाप और दादा की कसम उठाने से रोकता है। हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, इसके बाद मैंने कभी ऐसी कसम ना उठाई, मैंने इसके बाद कभी ऐसी कसम ना उठाई। तो बाप, दादा, माँ और इस तरह की कस्में, इनके सर की कस्में उठाने की इजाज़त नहीं है। ज़रूरत हो वहाँ कसम उठाई जाए, बिलावजह में कसम उठाई भी ना जाए या कसम खाई भी ना जाए, और जब कसम खानी हो तो वो अल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफात की कसम उठाई जा सकती है, इसके अलावा कसम की इजाज़त नहीं है जी।
इसी के साथ हमारे प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
मेरा प्यारा दीन।